38।
हमलावरों की पहचान मुश्किल है। सृष्टि की कठिनतम कंदराओं से निकलता पीव से सना हिरोशिमा चिल्लाता हुआ आ रहा था। हमलावरों की पहचान मुश्किल है। ये सब मिलकर अब मानव सम्मान को तोड़ देने पर आमादा हैं। इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है कि जीवनाधिकार के प्रश्न अब ये तय करेंगे। शक्तिशाली टाइटन्स को परास्त करने के बाद आर्यों के मृत्यु देवता यमराज ने एक परिषद बुलाई थी। उसमें सुमेरी अक्कादी सभ्यता का हेडीज मौजूद था। रोमन सभ्यता का प्लूटन भी इसमें शामिल हुआ था। इस परिषद में जीएस का भाई पासाइडन भी आया था। कौन पासाइडन? अर्दली महमूद अली ने पूछा। जीएस का तीसरा भाई, जिसे देव सम्राट बनने के बाद जीएस ने सृष्टि का जल साम्राज्य सौंपा है। यही है आज देवता व्यभिचारी इंद्र का सौतेला भाई। टाइटन्स पर विजय प्राप्त करने के बाद सब मदमस्त थे। इस महायुद्ध के बाद भी यही हुआ था। जैसे वर्दी वाले फौजी अफसरों ने उस बीवी के साथ बलात्कार किया था, उसी तरह पासाइडन के साथ लौटते हुए एजेक्स ने एथेनी की प्रतिमा से लिपटी एजेंड्रा को घसीटकर उस चिरकन्या का शील भंग किया था। कैजेंड्रा के साथ हुआ बलात्कार देवी एथेनी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। बलात्कार सिर्फ कैजेंड्रा के साथ नहीं, उसके साथ भी हुआ था, क्योंकि कैजेंड्रा मूर्ति से लिपटी हुई थी। आर्यों की अहिल्या तो पाषाण प्रतिमा में परिभूत हो गई थी और एथेनी काष्ठ प्रतिमा में परिवर्तित हो गई थी। तभी से दैवी साम्राज्य के सभी देवताओं ने पृथ्वी के शील भंग को अपना शगल बना लिया है। आदिवासी मोंटेजुमा ने टिप्पणी की, अपोलो खुद चिरकुमारी कैजेंड्रा का शील भंग करना चाहता था, जिसका उसे पर अवसर नहीं मिला। युद्धों के साथ लूटपाट और सामूहिक बलात्कार की यह परिपाटी अभी तक चली आ रही है। यही सभ्य कहे जाने वाले स्पेनिशों ने ब्राजील में किया था। यही हमारी सभ्यता की महिलाओं के साथ हुआ है। खुद को सभ्य पुकारने वाली इन गोरी नस्लों की यही सभ्यता और नैतिकता है। खैर, इसे छोड़ो।
पृष्ठ 342।
हमें मालूम है कि इसी अमानवीय पौराणिक सभ्यता के वंशजों ने अपने अपने साम्राज्य का विभाजन कर दिया था। जीएस ने देव सम्राट की पदवी ओढ़कर आकाश को अपना अधिकार क्षेत्र बनाया था। उसी ने पासाइडन को जल साम्राज्य सौंपा था और हेडीज को पाताल का अधिकारी बनाया था। लेकिन याद करो इन अमानुषों की वो संधि, जिसमें तय हुआ था कि पृथ्वी पर इन सभी तथाकथित देवताओं का समान अधिकार होगा। उन्हीं देवताओं के आधुनिक वंशज उसी पौराणिक संधि का वास्ता देकर आज भी पृथ्वी को अपने अधिकार में रखने का षड्यंत्र चला रहे हैं। मैं उसी का हवाला दे रहा था, हिरोशिमा बोला। आर्यों के यमराज ने जो परिषद आमंत्रित की थी, उसमें तीनों सभ्यताओं के दैवी साम्राज्य के मृत्यु देवताओं के अलावा पृथ्वी के तानाशाह हिटलर, मुसोलिनी और खुद मेरे देश का तोजो भी शामिल था। उन्हीं के साथ शामिल थे वे भौतिक शास्त्र के परमाणु वैज्ञानिक, जो नस्लवाद से खुद त्रस्त थे पर राष्ट्रवाद या वैज्ञानिक प्रगतिवाद के नाम पर सामूहिक हत्याओं और ध्वंस का नया मृत्यु दर्शन ईजाद कर रहे थे। इन वैज्ञानिकों का एक कुनबा था। हालांकि यहूदियों के खिलाफ जर्मनी और इटली में कानूनों के कारण विरोधी माहौल बन चुका था, उन्हें उच्च शिक्षा से वंचित कर दिया गया था, परंतु वैज्ञानिकों के कुनबे पर इस नस्लवादी भेदभाव का असर नहीं पड़ा था। मानवता की महामृत्यु का वैज्ञानिक फॉर्मूला तलाश करने में सब जुटे हुए थे। हिरोशिमा की बात सुनकर एक जिंदा बच गई बेचैन तितली पंख फड़फड़ाते हुए आई और बोली, मानवता के इतिहास का ये घोर अंधकार काल था। दूसरों को मौत देने के लिए अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड और रूस के तमाम वैज्ञानिक मृत्यु के अन्वेषण में जुट गए थे। सारे भौतिक विज्ञानी मृत्यु के आदि देवता यमराज, ग्रीक देवता पासाइडन और पाताल पुरुष हेडीज के जर खरीद गुलाम बन गए थे। उन्होंने अपनी आत्माएं गिरवी रख दी थीं। वे तानाशाहों के हाथों में मृत्यु के कारगर औजार सौंपकर विज्ञान की प्रगतिवादी अवधारणा का तर्क देते हुए अपनी पदवियां और वैयक्तिक सुविधाएं बटोर रहे थे। तितली ने ठीक कहा है, हिरोशिमा ने तायिद की। इस दौर के वैज्ञानिकों, भौतिक शास्त्रियों की पूरी जमात अपनी प्रयोगशालाओं में सिर्फ मौत पैदा करने के भयानकतम सिद्धांतों की सिद्धि प्राप्त करने में लगी थी। इसलिए इन परमाणु विज्ञानी को क्षमा नहीं किया जा सकता। विज्ञान के विकास के नाम पर मौत के इन सौदागरों को खुली छूट नहीं दी जा सकती। यमराज, हेडीज और पासाइडन की इस मजलिस में तीनों तानाशाह तो शामिल थे ही, जर्मन भौतिक विज्ञानी वॉन वेजसाकर, वर्नर हाइजनबर्ग के साथ एडवर्ड टेलर, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, रदरफोर्ड, रबी, एनरिको फर्मी, लियो जिनार्ड, लीड्स बोहर, रुडोल्फ पील्स और आइंस्टीन जैसे प्रकांड वैज्ञानिक भी मौजूद थे।
पृष्ठ 343।
मैं बताता हूं, इनकी वैज्ञानिक कीर्ति को लगभग अंतिम शिखरों तक पहुंचाने वाले अनुसंधानों से जुड़े अद्वितीय और अप्रतिम इतिहास की कहानी, उस अमानवीय इतिहास की कहानी जिसने विज्ञान जैसी प्रगतिकामी और पवित्र विधा को जीवन विरोधी बनने के लिए विवश किया। अजटेक सभ्यता का मैक्सिकन सम्राट मोन्टेजुमा सामने आकर अंधकार युगीन इतिहास के सूत्र सुलझाने लगा। ये यश और अपयश का अंतर विरोधी इतिहास है। वैज्ञानिकों का कुंबा विराट मानवता के हित में अपने प्रयोगों को अर्पित कर रहा था। वो प्रकृति के रहस्यों को अनावृत करने में लगा था, मानव शुभ की अभीप्सा के साथ। तभी तो मैडम क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार संपन्न किया था और कैम्ब्रिज के अपने समकालीन भौतिक विज्ञानी रदरफोर्ड के लिए क्यूरी ने कहा था, रदरफोर्ड ऐसे अकेले भौतिक शास्त्री हैं जो अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों से मानव जात को जीवन के बेमिसाल उपहारों से मालामाल कर सकते हैं। मारी क्यूरी ने रदरफोर्ड के विलक्षण अन्वेषणों में जीवन और जगत के लिए एक नई आशा देखी थी। रदरफोर्ड ने अपनी प्रयोगशाला में अजस्त्र ऊर्जा वाले अणु का अनुसंधान कर लिया था। इतना ही नहीं, मेरे वैज्ञानिक गुरु रदरफोर्ड ने अणु को भी विखंडित कर दिया था। उन्होंने अणु के केंद्रक न्यूक्लियस के रहस्य का पता लगा लिया था, जो अणु से 20,000 गुना छोटा और सूक्ष्म था, परंतु अपनी ऊर्जा शक्ति में अणु से सहस्त्र गुना अधिक संपन्न और शक्तिशाली। एक वैज्ञानिक से लगते व्यक्ति ने बीच में हस्तक्षेप किया। सभी लोगों ने उसे आश्चर्य से देखा। आपका परिचय? हिरोशिमा ने सख्ती से पूछा। मेरा नाम प्योत्र कबित्ज़ा है, मैं रूसी हूं। मैं अंग्रेज विज्ञानी आचार्य अर्नेस्ट रदरफोर्ड का शिष्य हूं। तुम मानव विरोधी अणुवैज्ञानिकों को हमारी मजलिस में आने की इजाजत नहीं है, हिरोशिमा ने क्रोध से कहा। बेहतर यही होगा कि आप यहां से तत्काल चले जाएं, उसे मोन्टेजुमा ने शांत किया। हिरोशिमा, मैं तुम्हारे जख्मों की पीड़ा पहचानता हूं, लेकिन हमें कबित्ज़ा जैसे विज्ञानी का स्वागत करना चाहिए। मौजूद लोगों ने उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। मैं ठीक कह रहा हूं, असीम दुख और प्रचंड यातना के समय भी हमें अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। इन्हें पहचानिए, ये वही प्योत्र एल कबित्ज़ा हैं जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के साथ कैम्ब्रिज में अनुसंधान करते रही हैं। यही कुछ वैज्ञानिक थे जिनके पास आत्मा नाम की चीज थी।
पृष्ठ 344।
अणु को विखंडित करने का रहस्य प्राप्त कर लेने के बाद रदरफोर्ड क्लांत और उदास हुआ था। उसने अपने फ्रांसीसी मित्र क्यूरी दंपति से कहा था, हमें इस अनुसंधान के नतीजों को गुप्त रखना चाहिए। यदि ये धूर्तों के हाथों में पड़ गया तो प्रकृति की शक्ति का ये सत्य मानवता के महाविनाश का कारण भी बन सकता है। और तब इन्हीं वैज्ञानिक कबित्ज़ा और एडिनबर्ग में कार्यरत मैक्स बोर्न ने अणु के विखंडन और केंद्रक की महाशक्ति का रहस्य राजनीति के सामने समर्पित करने से इनकार कर दिया था। मोन्टेजुमा अभी ये कह ही रहा था कि टुकड़ों टुकड़ों में इतिहास उपस्थित होने लगा। भयग्रस्त महत्वाकांक्षाओं के अंधड़ यूरोप में चलने लगे। नस्लवाद और राष्ट्रवाद के राक्षस जगह जगह जागृत होने लगे। फ्रांसीसी और रूसी क्रांतियों के चलते पूंजीवादी व्यवस्थाएं अपने जिरेबख्तरों और शिरस्त्राणों की मरम्मत करने लगीं। पूर्व सैनिक बेनितो मुसोलिनी के संघर्ष के लामबद्ध लंपट स्वयं सेवक एकाएक राजनीतिक क्षेत्र में उतर पड़े। इटली के नगरों महानगरों में उन्होंने मजदूरों और गरीबों के खिलाफ गुंडागर्दी का आतंक बर्पा कर दिया। गिरजाघरों के मामूली पुजारियों और पादरियों के वे संरक्षक बन गए। कस्बों की नागरिक संस्थाओं में उन्होंने संघर्ष संघ के तहत अपना वर्चस्व कायम किया, ट्रेड यूनियनों पर कब्जा किया, प्रशासन के बाबुओं और पुलिस तंत्र से मिलकर अपनी दादागिरी कायम की। उस अराजक माहौल में मुसोलिनी तब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक बनकर उभरा और प्रतिसत्ता का अवैध केंद्र बन गया। तब उसने राजकाज और सत्ता की नीतियों में हस्तक्षेप शुरू किया। येन केन प्रकारेण मुसोलिनी ने सत्ता हासिल करते ही सबसे पहले चर्च से गठबंधन किया। तब पोप ने कहा, हमने इटली को उसका ईश्वर दे दिया है और ईश्वर को इटली। और उधर नस्लवादी नफरत और अंधराष्ट्रीयता ने जर्मनी को हिटलर दे दिया और हिटलर को जर्मनी। रुको इतिहास, रुको, मोंटेज़ुमा ने आवाज दी और इतिहास रुक गया। और सुनो, 300 वर्षों से चली आती साहित्य की साझी संस्कृति और सह अनुभव की मानवतावादी धारा तब रुक गई। औपनिवेशिक और औद्योगिक संपदा ने मानवतावाद को रोमेंटिज्म में परिवर्तित कर दिया। कला रुचियां सामान्यकृत अनुभूति के शिखरों से उतरकर विलक्षणता के रोमांटिक घाटियों में विलुप्त होने लगी। मौलिक कलाकारों रचनाकारों की जगह विस्थापित कला का आहत दंश न झेल पाने वाले स्खलित रचनाकार कलाकार एकजुट होने लगे। वे अपनी अस्तित्व रक्षा के लिए उदार होकर एक दूसरे को जीनियस घोषित करने लगे। अमेरिका और यूरोप की आर्थिक मंदी से पेंटिंग्स की मंडी चौपट हो गई। बीथोवन के अवांगार्ड संगीत की दुनिया कुदरत की आवाजों में विलीन हो गई।
पृष्ठ 345।
कला मनुष्य के सौंदर्य या त्रास को समझने की जगह अपनी विकृति को समझे जाने की अपेक्षा करने लगी। पिकासो का क्यूबिज्म मानसिक आकृतियों को खंडित करके मनुष्य की कला चेतना को खंडहरों में जाने के लिए विवश करने लगा। यथार्थ की शुभम केंद्रीय परिकल्पनाओं की जगह भयावह अति यथार्थ की यातना पीड़ित अमूर्त आकृतियां आने लगीं। दादा और डॉली की दुनिया विकृति में अपने समय के सत्य को तलाशने लगी। डॉली की समय चेतना की घड़ी पिघलने लगी, पर वो समय की सुइयों को रोक नहीं पाया। तानाशाह बेनितो मुसोलिनी की फौजें इथियोपिया पर कब्जा करके थोड़ा रुक गई। हिटलर की फौजें राइनलैंड, ऑस्ट्रिया और पोलैंड को रौंद कर खड़ी हो गईं। मोंटेज़ुमा ने देखा, सामने फैला था एक यंत्रणा स्थल, उबड़ खाबड़, धरती फटी फटी और दरारों से क्षत विक्षत। उन्हें दरारों से जगह जगह आग की लपटें निकल रही थीं। उन्हीं के साथ सांपों की तरह सीतकार करती वाष्प की विषैली लहरें, उसी विषैली भाप में मूर्छित होते और दम तोड़ते लोग। हिटलर के पीछे उसका खूंखार कुत्ता खड़ा था और वो कबूतरों को दाना खिलाते हुए बोल रहा था, काकेशियन आर्यों का सूर्य और साम्राज्य इन अनारियों के लिए नहीं है। हमारे पास अपना ज्ञान, संज्ञान और विज्ञान है। हमें सामी यहूदियों के घटिया विज्ञान की जरूरत नहीं है। यंत्रणा स्थलों में फिर विषैला धुआं सीतकार करता भरने लगा। लोग फिर मूर्छित होकर दम तोड़ने लगे। बर्लिन, लीपजिंग, गोंटिजन और म्यूनिक की प्रयोगशालाएं सकते में आ गईं। सहमी प्रयोगशालाओं की सांसें अवरुद्ध होने लगी। सुनो हिरोशिमा, मोंटेज़ुमा ने कहा, तुम्हारी याचना की कहानी भी यहीं से शुरू होती है। यहीं से अणु के विखंडित न्यूक्लियस का इतिहास बदलता है। मनीषा, ज्ञान और नए विज्ञान से संपन्न कोई जाति अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। पदार्थ के गर्भ में अपनी संपूर्ण सत्ता के साथ उपस्थित अणु और अणु में मौजूद उसका और भी शक्तिशाली केंद्रक न्यूक्लियस उसकी नाभि में संचित अजस्र ऊर्जा का स्रोत, विखंडन की श्रृंखलाबद्धता का रहस्य जो पृथ्वी को सैकड़ों सूर्यों का प्रकाश और प्रत्येक भौतिक उपकरण को सदियों सक्रिय रहने की ऊर्जा दे सकता था, जो मृत्यु, जरा, ज्वर, विपत्ति, आपदा, दुख, यंत्रणा, विपन्नता, भय, मृत्यु और पश्चाताप में इंसान को मुक्त कर सकता था। अजस्र ऊर्जा के उस स्रोत की दिशा शुभ से अशुभ की ओर बदल गई, क्योंकि यहूदी जात की नाभि में विखंडन शुरू हो गया था। हिरोशिमा, जिस अणुबम की पीड़ा और यातना तुमने और नागासाकी ने सही है, उसका लक्ष्य तो हिटलर, बर्लिन और म्यूनिक था। लगभग सभी अणुवैज्ञानिक तो यहूदी थे। उनकी नाभि विस्थापित कर दी गई थी, उन्हें लगभग अछूत माना गया।
पृष्ठ 346।
इतना विशाल बौद्धिक अपमान और विस्थापन तो संसार के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। यह विस्थापन भी था और निर्वासन भी। अपमान, जाति भेद, भय, प्रताड़ना, तिरस्कार और आत्मिक दंशबोध से तपचालित हुआ था यहूदी मस्तिष्क। उसमें जन्मा था प्रतिशोध का श्रृंखलाबद्ध विखंडन और तब प्रामात्रा वाले क्वांटम सिद्धांत से विकसित सापेक्षतावादी सिद्धांत मनुष्य की नियति से निरपेक्ष और वितराग हो गया था। हिटलर ने आज श्रेष्ठता के दंभ में यहूदी वैज्ञानिकों का जो तिरस्कार किया था, उसने महाविनाश का महामार्ग प्रशस्त कर दिया था। देखो इस दृश्य को। और अंग खंडित हिरोशिमा ने देखा, प्रयोगशालाओं में साधना करने वाले ऋषियों की आकृतियां बदल रही थीं, वे तंत्र साधना करने वाले राक्षसों में विरूपित हो रहे थे। हिरोशिमा ने अपनी भयग्रस्त आंखों को हथेलियों से ढक लिया, वो अर्धमूर्छित सा हो गया था। रुका हुआ इतिहास फिर सक्रिय हुआ। आज हिटलर ने प्रयोगशालाओं का शुद्धिकरण शुरू कर दिया, चुन चुन कर अनाज बर्खास्त या सेवामुक्त होने लगे। मनुष्य की अपराजेय मेधा नस्लवादी हिंसा का शिकार हो गई, यहूदी वैज्ञानिकों का पलायन होने लगा। अल्बर्ट आइंस्टीन बर्लिन छोड़कर अमेरिका की ओर चल पड़ा, कुछ वैज्ञानिक कोपेनहेगन, पेरिस, ज्यूरिख और कैम्ब्रिज की ओर भाग निकले। मैक्स बॉर्न, जेम्स फ्रैंक और डेविड हेल्बर्ट ने अमेरिका छोड़ दिया। अणुबम के प्रमुख निर्माता एनरिको फर्मी को अपनी यहूदी पत्नी के कारण भागना पड़ा। हाइड्रोजन बम फैट मैन का भावी निर्माता एडवर्ड टेलर भी नहीं रुक पाया, वो जाकर ओपेनहाइमर के साथ अमेरिका की लॉस अल्मोस प्रयोगशाला में शामिल हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के साथ साथ आर्यों और अनार्यों के बीच भी युद्ध शुरू हो गया। यहूदियों का कुचला अहं प्रतिशोध मांगने लगा और मेरी धरती न्यू मैक्सिको के अलामागोर्डो के रेगिस्तान में सुबह 4 बजे जुलाई 16 सन 1945 को वो हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। आहत मोंटेजुमा जैसे किसी बहुत गहरी चोट से कराहने लगा। अणुबम का पहला परीक्षण और दूर से अपनी त्रिशूल परियोजना के परीक्षण की सफलता को देखकर ओपेनहाइमर पिशाचों की तरह नृत्य करने लगा। संस्कृत का जानकार होने के नाते तब उसे हिंदू आदियों की गीता से एक उद्धरण याद आया, मैं ही मृत्यु हूं और मैं ही जीवन। अब मैं मृत्यु रूप में अवतरित हुआ हूं, पृथ्वी के विध्वंस के लिए मैं ही मृत्यु हूं। धरती के ऊपर रेडियोधर्मी विषैली छतरी ने आकाश को आच्छादित कर दिया। उस सुबह सूर्य ने उदित होने से इनकार कर दिया और उस विस्फोट की श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया तत्काल पाताल में हुई।
पृष्ठ 347।
पाताल का जल खौलने लगा, मछलियां तड़पने लगीं। पाताल तल में मूंगो मोतियों से बने जल पुष्पों से सजे नीर महल ध्वस्त हो गए। जल कन्याओं के कोमल कांत शरीर फफोलों और बुलबुलों में बदल गए। जीवन की औषधि लाने गया गिलगमेश पाताल के उस खोलते पानी में उबलने लगा, उसका दम घुटने लगा। तब मैं पाताल में उतरा था अपने मित्र गिलगमेश को बचाने के लिए, मोंटेजुमा ने कहा। उबलता पानी, जलती कपास की तरह उफनता फेन, उसासे भरती दम तोड़ती निरीह मछलियों के निर्जीव होते पिंड, सरसों की तरह छितराए मूंगों के महल, झुलसे हुए जलपुष्प, जलते हुए पानी में तड़पती जलपरियां। मैंने गिलगमेश को संभाला, वो तो अच्छा हुआ कि अग्नि की नदी के किनारे हमें तुलसी का एक पौधा मिला, उसके श्याम वर्ण पत्तों ने गिलगमेश को छाया दी, अग्निल लहरों से उसे तुलसी की मंजरियों ने बचाया। तभी ब्रह्मांड के किसी कोने से लौह जंजीरों के खड़कने की तेज ध्वनि आई और फिर आई प्रमथ्यु की आवाज। गिलगमेश को सुरक्षित रखना, उसे बताना तुलसी की दाहिनी दिशा से पाताल के अंतिम जल की ओर एक जलमार्ग जाता है, रास्ते में अग्नि अरण्य पड़ता है, उसी अग्निवन के एक ओर सूर्य का अस्तांचल है और दूसरी ओर है स्वप्नों की नगरी, उसी नगरी में छिपा बैठा है धन्वंतरी श्रुपक का जीशुद्ध जीवन औषधि का एकाधिकारी, वो औषधि ही मृत्यु से मुक्ति दिला सकती है।
पृष्ठ 348।